प्रणाली का कोई खास रिएक्शन नहीं था। उसने लाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी और बड़ी राजकुमारी होने के नाते उसने भी गहने पहने हुए थे, लेकिन उसके गहने बहुत हल्के थे क्योंकि उसे भारी गहनों का शौक नहीं था। शौक तो इन सबका कीर्ति को था। कीर्ति ने डिजाइनर लहंगा पहना हुआ था, बालों का हेयर स्टाइल बनवाने के लिए स्पेशल हेयर स्टाइलिस्ट बुलाए हुए थे और उसका सेट भी डिजाइनर था। इस शादी में सबसे ज्यादा खुश कोई था तो वो थी कीर्ति, क्योंकि उसके भाई की शादी उसकी फ्रेंड से जो हो रही थी। शारदा जी ने ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसका गोल्डन बॉर्डर था। ज्योति और मिश्री ने भी लहंगा पहना हुआ था, लेकिन सब लोग एक तरफ और अरुणिमा एक तरफ, क्योंकि आज उसकी शादी थी इसीलिए सबसे ज्यादा खूबसूरत अरुणिमा ही लग रही थी। ज्योति और मिश्री अरुणिमा को लेकर मंडप के पास आती है। अरुणिमा के कानों में धीरे धीरे मंत्रों की आवाज आने लगती है। अरुणिमा जैसे ही मंडप के पास पहुंची, शारदा जी अरुणिमा के पास आई और उसे ले जाकर आस्तिक के बगल वाली कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन इस दौरान अरुणिमा ने एक भी बार नजर उठाकर आस्तिक को नहीं देखा था। और वहीं दूसरी तरफ आस्तिक की नजरें एक मिनट के लिए भी अरुणिमा के ऊपर से नहीं हटी थीं। पंडित जी अपने मंत्रोच्चारण में लगे हुए थे, लेकिन अरुणिमा की निगाहें कंटिन्यू उस पवित्र अग्नि को निहार रही थीं, लेकिन उसे अपने ऊपर आस्तिक की नजरों की तपिश महसूस हो रही थी। डर और घबराहट के कारण अरुणिमा की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि एक बार नजर उठाकर आस्तिक को देख सके। पंडित जी ने उन दोनों को देखकर कहा, अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। पंडित जी की बात सुनकर आस्तिक और अरुणिमा दोनों अपनी जगह पर खड़े हो गए और एक दूसरे की तरफ चेहरा कर लिया। मिश्री एक थाल में जयमाला लेकर आई। आस्तिक और अरुणिमा ने एक एक जयमाला अपने हाथों में उठा ली। आस्तिक के लिए बहुत मुश्किल नहीं था अरुणिमा के गले में माला पहनाना, क्योंकि अरुणिमा की हाइट आस्तिक के सीने तक ही आ रही थी। अब बारी थी अरुणिमा की वरमाला पहनाने की। उसने हल्का सा चेहरा उठाकर आस्तिक को देखा। आस्तिक की भूरी आंखें अरुणिमा को ही निहार रही थीं। अरुणिमा ने धीरे से अपना हाथ उठाकर आस्तिक को वरमाला पहनाने की कोशिश की, लेकिन अकड़ की दुकान आस्तिक रायचंद जरा भी नहीं झुका। वो पहाड़ की तरह तनकर खड़ा हुआ था और अरुणिमा के मजे ले रहा था। अरुणिमा के हाथ आस्तिक के गर्दन तक पहुंच ही नहीं रहे थे। सब लोग उन दोनों को देखकर हैरान थे। कीर्ति आगे आई और मजाकिया अंदाज में कहा, भाई क्या कर रहे हो, वैसे भी आपको सारी जिंदगी भाभी के सामने झुककर ही रहना है, थोड़ा सा झुक जाइए। कीर्ति के इस मजाक पर सब हंसने लगे। आस्तिक के चेहरे पर भी एक हल्की सी तिरछी मुस्कान आ गई, लेकिन अरुणिमा अब भी आस्तिक को वरमाला पहनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। पंडित जी ने आस्तिक से कहा, राजा साहब विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, थोड़ा सा झुक जाइए, कन्या को आसानी होगी वरमाला पहनाने में। आस्तिक ने घूर कर पंडित जी को देखा और कहा, सिंघल की रानी है ये, हमारे साथ सिंहासन पर बैठेगी, आपको नहीं लगता आसान चीज अभी ने छोड़ देनी चाहिए, एक छोटी सी वरमाला नहीं संभाल सकती है तो राज्य कैसे संभालेगी। अरुणिमा का चेहरा आस्तिक की बात सुनकर नीचे झुक गया था और उसके चेहरे पर बेबसी साफ नजर आ रही थी। सब लोग वहां पर हैरान थे। आस्तिक के इस जवाब की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तभी अरुणिमा को ऐसा लगा कि किसी ने उसे जमीन से ऊपर उठा लिया है। अरुणिमा हैरानी से नीचे देखी, यहां तक कि सब लोग भी ये सीन देख रहे थे। अरुणिमा को जिसने उठाया हुआ था वो एक 28 साल का लड़का था जिसने इस समय नेवी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। अरुणिमा और उसका पूरा परिवार उस लड़के को वहां देखकर हैरान था, यहां तक कि अरुणिमा भी चौंकते हुए बोली, रजत तुम? शारदा जी आगे आई और बोली, रजत बेटा तुम यहां पर? आस्तिक ने इस लड़के को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी आंखें ये सीन देखकर छोटी हो गई थीं। यहां तक कि सारा राज परिवार भी इस सीन को बहुत हैरानी से देख रहा था। ज्योति आगे आते हुए बोली, भाई क्या कर रहे हैं, अरु गिर जाएगी। रजत ने अरुणिमा को देखते हुए कहा, मोटी तो सच में भैंस हो गई है, जल्दी से माला पहना वरना सच में तो मेरे ऊपर गिर जाएगी और मैं जमीन पर गिर जाऊंगा। अरुणिमा मुस्कुराते हुए रजत को देखी और फिर जल्दी से राजा साहब को देखने लगी जो अपनी घूरती हुई आंखों से उन दोनों को देख रहे थे। अरुणिमा ने जल्दी से राजा साहब को वरमाला पहनाई और सब लोग ताली बजाने लगे। रजत ने अरुणिमा को नीचे उतारा। अरुणिमा ने रजत को देखा और खुशी जाहिर करते हुए कहा, रजत तुम कब आए और तुमने कुछ बताया क्यों नहीं? रजत ने भी हैरानी से शारदा माँ को देखा और कहा, हाँ जैसे मुझे यहाँ से हर खबर मिल रही थी ना। फिर रजत ने राजा साहब को देखा और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते राजा साहब। आस्तिक ने हल्की सी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, आपकी तारीफ। शारदा जी आगे आई और बोली, राजा साहब ये रजत है, ज्योति का बड़ा भाई, हमारे बच्चे जैसा ही है, पड़ोस में रहता है, लेकिन अभी कुछ साल पहले ही इसकी नेवी में जॉब लगी है इसीलिए ज्यादातर बाहर रहता है। आस्तिक ने रजत से कहा, देश के लिए काम करते हैं, मिलकर खुशी हुई। रजत ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और फिर पंडित जी से कहा, अरे पंडित जी आप क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी शादी करवाइए, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, मुहूर्त पर होनी चाहिए। रजत सबके पास आया। ज्योति रजत को देखकर बहुत खुश हुई और उसके गले लगते हुए बोली, भाई आप वापस आ गए, मैं बहुत खुश हूँ आपको वापस आया देखकर। रजत भी ज्योति के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने तो सोचा था यहाँ जाकर सबको सरप्राइज दूंगा, पर देखो मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिल गया। मिश्री भी रजत को गले लगाकर खुश हुई। शारदा जी बोली, रजत तुम्हें पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पर हैं और अरु की शादी का तुम्हें कैसे पता चला? रजत ने कहा, आंटी मैं सबसे पहले घर ही गया था, आपके घर पर रॉयल गार्ड्स को देखा तो थोड़ी हैरानी हुई, वैसे तो वो लोग मुझे कुछ बता नहीं रहे थे, पर जब उन लोगों ने मुझे यूनिफॉर्म में देखा तो उन्होंने सिर्फ मुझे इतना बताया कि आप सब लोग रॉयल मैरिज हॉल आए हैं, पर यहाँ आकर मुझे पता चला कि दरअसल आप लोग यहाँ पर और अरु की शादी करवा रहे हैं। झटका तो बहुत जोर का लगा, लेकिन फिर भी अरु की शादी राजा साहब से हो रही है ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अरुणिमा अपने दोस्त को देखकर मुस्कुरा रही थी और आस्तिक अरुणिमा को घूर कर देख रहा था। पंडित जी शादी की रस्में पूरी करवा रहे थे। यज्ञ में आहुति देने के बाद पंडित जी ने कहा, अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। आस्तिक और अरुणिमा फेरों के लिए खड़े हुए। कीर्ति जल्दी से आई और उन दोनों का गठबंधन किया। आस्तिक अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि अरुणिमा अपना हाथ दे सके। अरुणिमा ने पहले आस्तिक के हाथ को देखा। उसका मन कर रहा था कि वो अपने हाथ को किसी समंदर में फेंक दे, लेकिन इस समय ये पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उसने धीरे से हाथ उठाकर आस्तिक के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अपने हाथ पर अरुणिमा के हाथ महसूस होते ही आस्तिक के दिल में एक अजीब सी टीस उठी, लेकिन अगले ही पल उसने अरुणिमा के हाथ को कस के पकड़ लिया। अरुणिमा के हाथों में दर्द होने लगा। वो हैरानी से आस्तिक को देखने लगी, लेकिन आस्तिक के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे आस्तिक अरुणिमा का सजा दे रहा था। अरुणिमा के मुंह से दर्द से सिसकियां निकल रही थी और उसकी आंखों से पानी गिर रहा था, लेकिन आस्तिक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो इस तरीके से अरुणिमा का हाथ पकड़ते हुए उसके साथ साथ फेरे ले रहा था। जैसे ही उन दोनों के फेरे पूरे हुए और अब उन्हें आगे की रस्म करने के लिए फिर से मंडप पर बैठना था, तब जाकर आस्तिक ने अरुणिमा के हाथों को छोड़ा। अरुणिमा ने अपना हाथ देखा जो बुरी तरीके से लाल हो रखा था।
पंडित जी ने कहा, राजा साहब अब आप कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। उन्होंने मंगलसूत्र पर पानी चढ़ाते हुए कुछ मंत्र उच्चारण किया। उसके बाद आस्तिक ने वो मंगलसूत्र उठाया और अरुणिमा के गले में पहना दिया। अरुणिमा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो नज़र उठाकर आस्तिक को देख भी नहीं रही थी। आस्तिक को अपने हाथ पर आंसुओं की बूंद महसूस होते ही उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। पंडित जी के कहने पर आस्तिक ने एक चुटकी सिंदूर उठाया और अरुणिमा की मांग भरने लगा। पर जैसे ही आस्तिक अरुणिमा की मांग तक पहुंचा, तभी वहां पर कान फाड़ देने वाली एक जोर की गूंज सुनाई दी। एक लड़का रॉयल गार्ड्स को मारता हुआ रॉयल हॉल में घुस आया था और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, ये शादी नहीं हो सकती, अरुणिमा सिर्फ मेरी है।